राहों से, न जाने कौन गया है वफा की राहों से, कदम के नक्श चमकते हैं कहकशा की तरह। कौन इस राह से गुजरा है बड़ी हैरत है, किसके तनों से है जनों का नक्शा होना। आप साहब को ढूंढ रहे होंगे और बार बार उनके ऊपर नजर भी जा रही होगी। आइए मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने टीम की रसायन और उस मौके पर जो की सबक है, क्योंकि वो दिल से बात कहते हैं और जो बात भी कहते हैं वो दिल पे असर करती है, इसलिए मैं मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने टीम की बात और टीम की रसायन को हम सामने के सामने मुअस्सर अंदाज में पेश करें।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ابھی جب میں بولنے کے لیے یہاں پہنچ رہا تھا तो सूरत शहर में हर समाज के लोगों में जानी मानी शख्सियत हमारे गुलाम मुस्तफा हकीम जी मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब कुर्सी पर बैठ कर के कुछ बोल दीजिए। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इसी कुर्सी ने तो हमारे मुल्क को बर्बाद कर रखा है। जो कुछ सारे झगड़े और फितने हैं ये किसी कुर्सी के झगड़े हैं। अल्लाह मेरे मुल्क को, हिंदुस्तान को इस कुर्सी के झगड़े से पाक फरमा दे। शायद इसी महीने के अंदर मुस्लिमों ने ईद मनाई है और इसी महीने के अंदर हमारे हिंदू भाइयों ने गणेश चतुर्थी मनाई है। एक ही महीने में दो त्योहार आए हैं, ईद भी हुई, त्योहार भी हुआ, खुशी भी हुई, लेकिन एक दर्द से, एक भारतीय होने के नाते से एक बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। इसी महीने में मुसलमानों की ईद है, हिंदू भाइयों की गणेश चतुर्थी है, लेकिन आज का दिन मौलाना फैयाज साहब को हम सब सलाम करते हैं। इन्होंने सूरत वासियों को कौमी एकता के नाम के ऊपर जोड़ करके सही त्योहार आज के दिन दिया है। वाकिया है सूरत की सरजमीन के ऊपर आज ये बहुत बड़ी ईद कह लीजिए, बहुत बड़ा त्योहार कह लीजिए कि कौमी एकता के नाम के ऊपर हम सब एक होकर के जमा हो रहे हैं। हमारे देश की बात क्या करूं, दुनिया में जाके कहता हूं कि हमारा भारत देश कितना महान है। अल्हम्दुलिल्लाह परमेश्वर का एहसान है, मैंने कुरान भी पढ़ा है और मेरी वेद के ऊपर भी स्टडी है। बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, रेफरेंस के साथ, परमेश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने जब पहले इंसान को, जो पहले इंसान थे, जिसको कुरान ने आदम कहा है, वेद ने जिनको मनु कहा है, जब आकाश से, स्वर्ग की भूमि से इस जगत में भेजने का परमेश्वर ने, अल्लाह ने फैसला किया, तो पूरी दुनिया की जमीन में से हिंदुस्तान की जमीन को परमेश्वर ने पसंद किया। इस देश की जमीन के अंदर वो मोहब्बत है, वो एकता है, वो प्रेम है कि शायद इसी हिम्मत से परमेश्वर ने पहले मानव को इस देश की सर जमीन के ऊपर उतारा था। कुदरत ने इस देश की जमीन के अंदर मोहब्बत रखी है, प्रेम रखा है। इस देश की राजधानी में, दिल्ली में, एक बहुत बड़े हमारे सूफी संत आराम कर रहे हैं, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह है, जिनके नाम के ऊपर रेलवे स्टेशन भी है, ट्रेन भी चलती है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन बहुत बड़े सूफी संत थे।
एक मरतबा उनका एक शिष्य एक चेला शागिर्द हजरत के पास कैंची लेकर गया है, कातर लेकर गया है कि पीर साहब गुरु जी मैं आपके लिए गुरु दक्षिणा के तौर पर गिफ्ट के तौर पर लाया है। तो ख्वाजा साहब ने ये फरमाया कि ये कैंची तुम मेरे लिए गिफ्ट में लेकर के आए हो, बेहतर तो ये था कि मेरे लिए सुई लेकर के आते, इसलिए कि कैंची काटने का काम करती है और सुई लोगों को जोड़ने का काम करती है। आपको मैं क्या बताऊं, ये मुल्क की आजादी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, मुल्क को हमने गुलामी से आजाद किया है कौमी एकता की ताकत से, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ताकत से हमने इस देश को आजाद किया है। शायद आपको मालूम न हो तो मैं शहीद अशफाक उल्लाह खान की एक बात आपको बतलाता हूं। जिस वक्त अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया था, शहीद अशफाक उल्लाह खान अकेले नहीं थे, उनके साथ हिंदू दोस्त तो उनके राम प्रसाद भी साथ में थे। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद को दोनों को एक साथ एक दिन एक तारीख के अंदर एक जेल में फैजाबाद में फांसी की सजा दी गई। जब अशफाक उल्लाह खान को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया, उन्होंने अपनी मां के नाम के ऊपर एक लेटर लिखा जेल में से। उस लेटर के दो सेंटेंस में आपको सुनाता हूं। अशफाक उल्लाह खान लिखते हैं, ए मेरी मां, मौत और जिंदगी दोनों एक रास्ते के मुसाफिर है। जो पैदा हुआ उसकी मौत एक दिन होने वाली है, लेकिन मेरी मां फुफकार से अभिमान के साथ दुनिया में लोगों के सामने ये कहना कि वो एक शहीद बेटे की मां है। तेरा बेटा देश की आजादी के वास्ते शहीद हुआ है, लोगों के सामने अभिमान के साथ कहना। मां को वो लेटर पहुंचता है, किस दर्द से मां ने उस लेटर को पढ़ा होगा। फांसी की सजा होने से दो दिन पहले 17 दिसंबर 1927 को उनकी जेल में उनके भाई और भतीजे उनको मिलने के लिए गए अशफाक उल्लाह खान को। जब भाई और भतीजा मिलने के लिए पहुंचे, अशफाक उल्लाह खान जेल में ना करके तैयार होकर के भाई से मिलने के लिए आते हैं और अपने भाई से कहते हैं कि भाई मेरी एक बात सुन लो, दो दिन के बाद मुझे फांसी हो रही है, लेकिन जिस वक्त पर मुझे फांसी की रस्सी गले में डाली जाएगी तो मैं उसको फूल के हार की तरह अपने गले के अंदर डालूंगा, इसलिए कि वो मेरी फांसी मेरे देश के वास्ते है, अपने वतन के वास्ते है, मैं इसको फूल के हार गले। भाई का कहना था कि अशफाक उल्लाह खान जब हमको मिलने के लिए आए तो उनकी आंखें चमक रही थी, उनके दिल में कोई घबराहट और डर नहीं था, इसलिए कि वो देश वास्ते फांसी की सजा को कबूल कर रहे थे। अंग्रेजों ने उनको आखिरी बात कही कि अशफाक उल्लाह खान आप माफी मांगी, लिख करके माफी मांग लीजिए, हम आपको माफ कर देंगे। उस देश प्रेमी ने
जेल के अंदर अंग्रेजों की आंखों में आंख मिला करके जवाब दिया, मैं खुदा के सिवा किसी और के सामने माफी मांगना हराम समझता हूं, अगर मैं माफी मांगूंगा तो अंग्रेज इतिहासकार लिखेंगे हिंदुस्तानी लोग बुजदिल होते हैं, और मैं अपने देशवासियों को बुजदिल बतलाना पसंद नहीं करता हूं। मैं माफी मांगने को हराम समझता हूं। हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों के शासन को हम किसी हाल के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब 19 तारीख हुई 19 दिसंबर 1927 का दिन हुआ, इस दिन अशफाकुल्ला खान को फांसी दी जा रही थी। जब फांसी के लिए उनको ले जा रहे हैं तो इन्होंने फांसी के माचड़े के ऊपर खड़े होकर के देशवासियों को जो आखिरी पैगाम दिया है, लास्ट मैसेज दिया है, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। अशफाकुल्ला खान कहते हैं, मेरे भारत के भाइयों, तुम किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, लेकिन देश हित के वास्ते, देश की रक्षा के वास्ते एक होकर के काम करना। आगे फरमाते हैं, आपस में झगड़ा मत करना, मैं तुम्हारे दरमियान से विदाई लेता हूं। ये कहकर के एक हाथ में कुरान है, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, जुबान से कलमा पढ़ रहे हैं, और मक्का हज की यात्रा पर जाने वाला हाजी जैसे लब्बेक लब्बेक पढ़ता है, अशफाकुल्ला खान देश की आजादी के लिए फांसी की रस्सी को चूमते हुए लब्बेक लब्बेक की आवाज पढ़ रहे हैं, और आखिरी मैसेज दिया पूरे देशवासियों को, दो शायरी कही, किस तरह मरते हैं ये शेरे वतन भारत पर, किस तरह मरते हैं ये शेरे वतन भारत पर, ये तमाशा है जो दुनिया को हमें दिखाना है, कुछ आरजू नहीं है, है अगर आरजू तो ये है, कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन मेरे कफन में, रख दे कोई जरा सी खाके वतन मेरे कफन में। क्या मोहब्बत थी उनके दिल के अंदर देश के खातिर। मेरी एक बात अपने सीने के ऊपर लिख लो, आज के इस प्रोग्राम का मैसेज है, आजादी हमने कौमी एकता की ताकत से ली है, हम आजाद हैं कौमी एकता की ताकत की बुनियाद के ऊपर। और आगे वाली बात सुन लो, अगर हिंदुस्तान को दुनिया की महासत्ता बनाना है और भारत देश को दुनिया की महासत्ता सुपर पावर ताकत बनाना है, तो उसके लिए हमें तमाम मजहब वालों को एक होकर के रहना पड़ेगा। मुस्लिम हिंदुस्तानी होने के नाते से मेरे दिल की आरजू और तमन्ना है, मेरा देश दुनिया में सुपर पावर ताकत हो, और दुनिया का कोई देश मेरे देश की आंख में आंख न मिला सके। और ये महान ध्येय हम उस वक्त सिद्ध कर सकेंगे जब हम सब एक होकर के मिलजुल करके रहेंगे। आज दुनिया में जो ताकत, जो हुकूमतें हमारे देश की प्रगति को नहीं चाहती, वो हमको आपस के अंदर लड़ा रहे हैं। इस देश की जमीन पे मोहब्बत है और लड़ाने वाले कोई और है, लेकिन आज हम एक होकर के आवाज लगाते हैं, हम दुश्मनों की इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे, और हमारा देश दुनिया में प्रगति करता रहेगा, तरक्की करता रहेगा, और इस देश को दुनिया की कोई ताकत कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। मैं आखिरी मैसेज आपको इस स्टेज से सुना देना चाहता हूं। देखो मेरे देशवासी भाइयों, आज कितना खूबसूरत मंजर है हमारे सामने कि साधु संत लोग, मौलवी मुफ्ती लोग एक स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा आपके सिटिंग रूम के अंदर फ्लावर पॉट होगा, गुलदस्ता होगा, फूलदानी होगी आपके सिटिंग रूम के अंदर, कभी फ्लावर पॉट के ऊपर आपने एक बात सोची कि गुलदस्ता फ्लावर पॉट फूलदानी कब अच्छी लगती है? जब उसमें अलग अलग रंग के अलग अलग फूल हो, कोई पीला हो, कोई लाल हो, कोई सफेद हो, कोई गुलाबी हो, और तमाम फूल खिले हुए हो, तब जाकर के वो फूल, वो गुलदस्ता, वो फूलदानी बहुत खूबसूरत लगती है। मेरा भारत देश एक गुलदस्ता है, एक फूलदानी है, और उसमें बसने वाली तमाम कौम, तमाम मजहब और धर्म के लोग उसके बेहतरीन फूल हैं। ये मेरा गुलदस्ता भारत देश की फूलदानी उसी वक्त दुनिया में अच्छी लगेगी जब तमाम फूल खिले हुए हो और तमाम अलग अलग फूल बेहतरीन चमक रहे हो, तब जाकर के हम दुनिया के अंदर अपनी छवि को अच्छी बतला सकेंगे। याद रख लो, अगर हज का प्रोग्राम तुमने कभी न देखा हो, जो लाइव कास्टिंग होता है, तो मैं आपको दावत देता हूं, नवंबर के महीने के अंदर हज का महीना आ रहा है, जब मुसलमान पूरी दुनिया से मक्के मुकर्रमा जाते हैं हज करने के वास्ते, हज का लाइव प्रोग्राम देखने की मैं आपको दावत देता हूं। आपको ये देख करके खुशी होगी, हिंदुस्तान से जाने वाले, भारत से जाने वाले हाजी जब मक्का की जमीन में होते हैं, अरफात में, मीना में, मुजदलिफा में होते हैं, काबा के सामने होते हैं, तो वहां भी उनके हाथ में तिरंगा झंडा होता है। अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। ये मुसलमान दुनिया के लोगों को मैसेज देते हैं, हम मक्का की जमीन पर भी आते हैं तो भारतीय बन करके आते हैं।
हमें अपने देश से मोहब्बत है, प्रेम है, इसलिए मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ, कौमी एकता हमारे देश की सबसे बड़ी विरासत है। और मंदिर मस्जिद के कोई झगड़े नहीं है, कहने वाले ने खूब कहा है, शब्बर ने बना दी मस्जिद, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, सालों में नमाजी बन न सका। जरूरत है कि हम अपने नबी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अमन और शांति का मैसेज लेकर के आए, हम उसको लेकर के दुनिया के अंदर चले, पूरे देश को हम ये पैगाम पहुंचाए, तब जाकर के हम सही कह सकेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो एक मरतबा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलशिता हमारा। आखिर दावाना ने हम लिखा मुफ्ती साहब की जबान आप समाप्त करना है, तो अब आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ, चूंकि वक्त काफी हो चुका है हमारे पास। इस तकरीब में शहीद और